Iran Radio Podcast.
दोस्तों, जितना पुराना इतिहास इंसान का है उतना ही पुराना युद्ध और शांति का भी है। जब से इंसान है युद्ध और शांति भी तभी से है। दुनिया में अलग अलग वजहों से जंगें लड़ी जाती रही हैं। धर्म के नाम पर लड़ी जाने वाली जंगों का एक सिलसिला था जिसे हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। क्रूसेड पॉडकास्ट का यह 17वां एपिसोड है। ईरान रेडियो से मैं हूं सैयद मीसम अब्बास। अगर आप दूसरे दिलचस्प विषयों पर भी पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट iranradio.ir/hi पर विजिट कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि फ्रांसीसी सम्राट सेंट लुइस ने फिलिस्तीन के ईसाइयों के समर्थन में क्रॉस उठाकर एशिया का रुख किया। उन्होंने पहले ट्यूनिशिया पर हमला करना बेहतर समझा ताकि ट्यूनिशियाई जहाज़ों का फ्रांसीसी व्यापारी जहाज़ों के सामने रुकावटें खड़ी करने का सिलसिला कम हो सके। इसके अलावा ट्यूनिशिया पर कब्जा करके वहां के राजा और जनता को ईसाई बना दिया जाए और फिर वहां से मिस्र का रुख किया जा सके। समुद्र पार करने के बाद फ्रांसीसी सेना ट्यूनिशिया पहुंची और उसने कार्थेज शहर के पास पड़ाव डाल दिया। उस समय ट्यूनिशिया का राजा अल मुंतसिर था। दोनों तरफ से जबरदस्त लड़ाई हुई। क्रूसेडर्स ने शहर को घेर लिया और उसे जीतने की कोशिश की। ये लड़ाई महीनों तक चली जिसकी वजह से क्रूसेडर सेना की रसद खत्म हो गई। क्रूसेडर सेना में इन्फेक्शन फैल गया और कई लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ क्रूसेडर्स पर ट्यूनिशियाई सैनिकों के लगातार हमलों ने उन्हें बेचैन कर दिया और उनकी नींद उड़ा दी, जिससे वो और भी ज्यादा हताश हो गए। यूरोपीय सेना में बीमारी इतनी ज्यादा फैल गई थी कि लुइस के बेटे की मौत हो गई। कुछ समय बाद सेंट लुइस खुद भी बीमार पड़ गए और गुजर गए। लुइस की मौत के बाद उनके बेटे फिलिप थर्ड ने, कि जिन्हें बोल्ड निकनेम दिया गया था, सेना की कमान संभाली और कार्थेज शहर की घेराबंदी में अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश की। क्रूसेडर सेना जीत से निराश थी और शायद फ्रांस लौटने की योजना बना रही थी। तभी लुइस का भाई क्रूसेडर्स की मदद के लिए एक बड़ी सेना के साथ आन पहुंचा। क्रूसेडर सेनाओं के मजबूत होने से शहर पतन की गगार पर था, इसलिए ट्यूनिशिया के राजा ने शांति का प्रस्ताव भेजा। फिलिप ने भी मौके का फायदा उठाया और ट्यूनिशिया के मुसलमानों के लिए कड़ी शर्तों के साथ एक शांति संधि पर दस्तखत कर दिए। इस ट्रीटी के मुताबिक ट्यूनिशिया फ्रांस के अधीन चला गया और क्रूसेडर्स को युद्ध के हर्जाने के तौर पर 2,20,000 सोने के सिक्के देने का वादा किया। क्रूसेडर्स की खुशी ज्यादा देर तक बाकी नहीं रही क्योंकि क्रूसेडर्स यूरोप लौटते समय तूफान में फंस गए और उनमें से कई लोग समुद्र में डूब गए। उसी समय इंग्लैंड के क्राउन प्रिंस प्रिंस एडवर्ड ने फिलिस्तीन में एक और क्रूसेड शुरू कर दिया। वो फिलिस्तीन तब पहुंचे जब एंटियोक की मिस्र के ममलूक सुल्तानों में से एक बेबर्स बोंदोख दारी की सेना ने घेराबंदी की हुई थी। बेबर्स ने फौरन घेराबंदी खत्म की और इंग्लिश प्रिंस का सामना करने के लिए निकल पड़े। एडवर्ड बेबर्स के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बन सके क्योंकि उनके पास काफी संख्या में सैनिक नहीं थे और उनकी एकमात्र उम्मीद मंगोल थे। बेबर्स ने एडवर्ड की मदद के लिए भेजे गए मंगोल टुकड़ी को वापस खदेड़ दिया। कुछ समय तक बेकार की छापेमारी के बाद एडवर्ड आखिरकार बेबर्स के साथ एक ट्रीटी करके अपने देश लौट गए। इस समय फिलिस्तीन में एडवर्ड के साथ मौजूद आर्क बिशप को पोप चुना गया। उन्होंने यूरोपियन लोगों को जिहाद में शामिल होने के लिए उकसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं ले रहा था क्योंकि रनसीमन के मुताबिक क्रॉस के नाम पर किया जाने वाला जिहाद अपने रास्ते से भटक गया था और पोप के आक्रामक और छोटी सोच वाले लक्ष्यों को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक जरिया बन गया था। हालांकि क्रूसेडर बेबर्स के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं बन सकते थे, इसलिए सिर्फ मंगोल खतरों से सावधानी बरतने से ही बेबर्स सीरिया और फिलिस्तीन में क्रूसेडरों का काम पूरा नहीं कर पाए। आखिरकार क्रूसेडरों से कई इलाकों को आज़ाद कराने के बाद बेबर्स की बीमारी से मौत हो गई। बेबर्स के बाद मिस्र में हुए राजनीतिक बदलावों के बाद बेबर्स के मंत्री कलाउन ने आखिरकार गद्दी संभाली। उसने होम्स इलाके में मंगोल सेना को कड़ी टक्कर देकर हरा दिया और फिर क्रूसेडरों का सामना करने के लिए लिवेंट का रुख किया, क्योंकि क्रूसेडरों ने अलेप्पो पर कब्जा करने और वहां के लोगों का कत्लेआम करने और लूटपाट करने में मंगोलों की मदद की थी। कलाउन ने मुरकब के किले पर कब्जा कर लिया, जिसमें रहने वालों ने बार बार मंगोलों की मदद की थी। कलाउन ने त्रिपोली पर चढ़ाई कर दी, जो क्रूसेडर्स और फ्रांसीसी लोगों के कब्जे में था, और कड़ी घेराबंदी के बाद उस पर कब्जा कर लिया। त्रिपोली के पतन की खबर ने एकर के गिरने का रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि मुसलमानों का हौसला मजबूत हो गया था और एकर के रहने वाले भी स्थिरता से निराश हो गए थे। त्रिपोली पर कब्जे का यूरोप में रिएक्शन हुआ। पोप निकोलस फोर्थ ने यूरोपियन देशों के नेताओं को चिट्ठियां भेजी, जिसमें उनसे अपनी सेनाओं के साथ पूरब की ओर बढ़ने को कहा गया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी पोप की चिट्ठियों पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, इटली में जिहाद के लिए एक पॉपुलर मूवमेंट शुरू किया गया, जिसे रनसीमन के अनुसार असली जिहाद नहीं माना जा सकता था, लेकिन पूरब की ओर बढ़ने के लिए उनमें सबसे ज़रूरी वजह पैसे का मकसद था। वो लिखते हैं, सिर्फ उत्तरी इटली में ही पोप को कुछ रिस्पांस मिला। ये रिस्पांस अमीर लोगों की तरफ से नहीं, बल्कि उन आवारा लोगों के बिखरे हुए ग्रुप की तरफ से आया था, जो इनाम की तलाश में पूरब को लूटने की उम्मीद में पोप के बुलावे पर आए थे। ये ग्रुप एकर गया, जहां उन्होंने मुस्लिम नागरिकों और व्यापारियों का कत्लेआम किया। इन जुर्मों की वजह से कलाउन ने एकर जीतने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे ही उसकी बड़ी सेना काहिरा से एकर के लिए निकली, कलाउन बहुत बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। कलाउन के बेटे और वारिस अल अशरफ ने अपने पिता को वचन दिया कि वो क्रूसेडर्स के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगा। अपनी ताकत मजबूत करने और साजिश करने वालों को कुचलने के लिए अल अशरफ ने एक साल तक एकर में सैन्य अभियान को टाल दिया। जब अल अशरफ की सेना ने एकर का रुख किया, तब एकर की आबादी 30,000 से ज़्यादा थी और ये क्रूसेडर्स के सबसे अहम शहरों और ठिकानों में से एक था। शहर में मजबूत किले थे और क्रूसेडर डिफेंडर एकर की रक्षा के लिए हर तरफ से आए थे। शहर को मुसलमानों ने घेर लिया था। एक सख्त लड़ाई के बाद शहर पर आखिरकार मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। पहले ये शहर मुस्लिम इलाके पर क्रूसेडर्स के हमले का अगुआ हुआ करता था, इसलिए इसकी दीवारें और टावर पूरी तरह से तोड़ दिए गए, ताकि दोबारा कब्जा करने की हालत में क्रूसेडर्स के लिए इसकी रक्षा करना मुमकिन न हो। एकर के बाद अल अशरफ ने दूसरे अहम शहरों पर कब्जा कर लिया। जैसा कि हमने जिक्र किया था, मिस्र में ममलूकों का उदय, जिसमें बेबर और अशरफ शामिल थे, एशिया में क्रूसेडर्स की पॉलिटिकल मिलिट्री जिंदगी को ख़त्म करने में कामयाब रहा। उनके लिए एकर के पतन की खबर उतनी ही भयानक और दुखद थी, जितनी सलाहुद्दीन के समय यरूशलम के पतन की खबर थी। हालांकि दोनों घटनाओं के हालात बिल्कुल अलग थे। यरूशलम के पतन के समय यूरोप के लोगों का पोप से भरोसा पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन एकर के पतन के समय यूरोप के राजाओं और आम लोगों दोनों का पोप पर भरोसा ख़त्म हो गया था। इसलिए इस बार किसी ने भी क्रूसेड में हिस्सा लेने के पोप के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। रनसीमन लिखते हैं, पश्चिमी यूरोप अपने ही अंदरूनी मामलों में फंसा हुआ था। उस जोश और उत्साह का कोई अता पता नहीं था, जिसने पहले बड़े शासकों और राजाओं को पूरब की ओर खींचा था। आम लोगों की सेना बनाना भी पहले जितना आसान नहीं था। पश्चिम के लोगों को बहुत सारी नई सुविधाएं और सुख मिल गए थे, और अब वो युद्ध के प्रोपेगेंडे पर ध्यान नहीं देते थे। वो अब अपने भोले भाले पूर्वजों की तरह सच्चाई की अनदेखी नहीं कर सकते थे। बेतहाशा वादों और इनामों का लालच भी काम नहीं आया। राजनीतिक और निजी फायदों के लिए पवित्र जिहाद के इस्तेमाल ने लोगों की आंखें खोल दी थीं। इस समय पोप निकोलस फोर्थ की यूरोप के लोगों और राजाओं को जंग में झोंकने की कोशिशें बेकार हो गईं। मंगोल इलखान और गजान खान के इस्लाम लाने से ईसाइयों को निराशा हुई, जो मिस्रियों पर हमला करने और फिलिस्तीन हासिल करने के लिए मंगोलों का इस्तेमाल करना चाहते थे। पोप निकोलस की मौत के बाद कई पोप सत्ता में आए, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ खास हासिल नहीं कर सका। दूसरे चर्च मिशनरियों ने जिहाद और क्रूसेड की शुरुआत के लिए प्रचार नहीं किया जैसा कि उन्होंने पहले किया था। हाँ, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगंडा किया गया, लेकिन इस बार ये काम लेखकों ने किया। इन लेखकों ने अपनी किताबों और लेखों में फिलिस्तीन पर कब्जा करने का प्लान बताया। उन्होंने क्रूसेडर शहरों के नुकसान की कहानी याद करके, खासकर मुसलमानों पर आरोप लगाकर और अजीब झूठ लिखकर यूरोप के लोगों और राजाओं को पूरब की ओर बढ़ने के लिए हिम्मत देने की कोशिश की। क्रूसेड को फिर से शुरू करने की कोशिश एकर के गिरने के 75 साल बाद तक जारी रही। क्रूसेड की राख से आखिरी चिंगारी भड़की और एक और क्रूसेड की ओर ले गई। इस बार पहल पोप की तरफ से नहीं बल्कि साइप्रस के राजा पीटर की तरफ से हुई थी। उन्होंने पूरे यूरोप का दौरा किया और यूरोप के राजाओं को एक और युद्ध शुरू करने के लिए मनाने की कोशिश की। पीटर अलेक्जेंड्रिया में एक बड़ी सेना भेजने में कामयाब रहे। उस समय मिस्र का सुल्तान शाबान नाम का एक 11 साल का लड़का था। युद्ध शुरू हो गया, एक अचानक और असमान युद्ध।